国国际广播电台。
耶 ，China Radio International 嘿。
नमस्कार, यह है चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल महिला स्पेशल और टी टाइम प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा पश्चिम की तीर्थ यात्रा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट पर राय मांगी गई। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने वनथियन प्रायोगिक मॉड्यूल में युवाओं को शिक्षा दी और चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि एक तरफा जबरदस्ती के उपाय मानव समाज का कैंसर है। अब आप अखिल पारस सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने हाल ही में पेचिंग में गैर सीपीसी लोगों की संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट पर विभिन्न लोकतांत्रिक पार्टियों की केंद्रीय समितियों, अखिल चीन उद्योग और वाणिज्य संघ के प्रमुखों और गैर दलीय लोगों के प्रतिनिधियों से राय और सुझाव मांगे गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की और एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और विभिन्न लोकतांत्रिक पार्टियों को सहयोग को मजबूत करना और व्यापक देशभक्ति संयुक्त मोर्चा को मजबूत और विकसित करना, सभी स्तरों और सभी पहलुओं की बुद्धि और ताकत को अधिकतम करना, पूरे समाज और पूरे देश के उत्साह और रचनात्मकता को अधिकतम करना, एक साथ आधुनिक समाजवादी देश के चौतरफा निर्माण और चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान को बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टियों की केंद्रीय समितियों, अखिल चीन उद्योग और वाणिज्य संघ के प्रमुखों और गैर दलीय लोगों के प्रतिनिधियों ने भाषण देते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की मसौदा रिपोर्ट में सिलसिलेवार नए विचार, नई रणनीतियां और नए कदम प्रस्तुत किए गए। वह आधुनिक समाजवादी देश के चौतरफा निर्माण के लिए चीन का मार्गदर्शन दस्तावेज है। उन्होंने चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान पर आम सहमति बढ़ाने के लिए राय और सुझाव भी दिए। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू चिन सोंग ने चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। उन्होंने चीन भारत संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति जैसे मुद्दों पर मैत्रीपूर्ण तरीकों से विचारों का आदान प्रदान किया। लियू चिन सोंग ने कहा कि हाल ही में चीन भारत के बीच मानवीय आदान प्रदान ने महामारी की कठिनाइयों को दूर करते हुए प्रगति की है। अब तक 1,300 से अधिक भारतीय छात्रों को चीन आने के लिए वीजा प्राप्त हो गया है और लगभग 300 व्यापारी चीन के चर्चांग प्रांत के ईवू शहर पहुंचे हैं। भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने इसके लिए आभार जताया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के सफल आयोजन की कामना की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन ने 12 अक्टूबर को कहा, अमेरिका को चीन को व्यापार के शस्त्रीकरण से रोकना चाहिए। संबंधित कथन की चर्चा के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 13 अक्टूबर को कहा कि चीन हमेशा आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के राजनीतिकरण और शस्त्रीकरण का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक व्यापार के उदारीकरण और सुविधा को बनाए रखने और वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ देश एकतरफावाद और संरक्षणवाद में संलग्न हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार सहयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। बारह अक्टूबर को दोपहर बाद ध्यान आकर्षक थियनकोंग क्लास की तीसरी कक्षा दी गई। 6 महीनों के बाद चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने फिर एक बार अंतरिक्ष में युवाओं को शिक्षा दी। संचो 14 चालक दल के अंतरिक्ष यात्रियों ने चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के वनथियन प्रायोगिक मॉड्यूल में युवाओं के लिए एक रंगारंग अंतरिक्ष पृथ्वी इंटरैक्टिव शिक्षा दी। लगभग 50 मिनट तक चली कक्षा में चीनी अंतरिक्ष यात्री छनतुंग ल्यू यांग और चाय सूचिए ने अंतरिक्ष स्टेशन के वनथियन प्रायोगिक मॉड्यूल में काम करने और जीवन बिताने की स्थिति का परिचय दिया और वैज्ञानिक सिद्धांतों का परिचय देने के साथ कुछ विज्ञान प्रयोग भी किए। उनके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों ने चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में धान और अर्बिडियोपिस रोपण और अनुसंधान की स्थिति का परिचय भी दिया। चीन ने 13 अक्टूबर की सुबह 6:53 पर उत्तर पश्चिम चीन के चियो छुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्ग मार्च 2C वाहक रॉकेट के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह SSAR-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसने सफलतापूर्वक पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया। लॉन्च मिशन पूरी तरह से सफल रहा। उपग्रह SSAR-01 मुख्य रूप से आपातकालीन प्रबंधन और पारिस्थितिक पर्यावरण के मुख्य व्यवसाय के लिए स्थानीयकृत डेटा गारंटी प्रदान करता है। साथ ही यह उपग्रह प्राकृतिक संसाधन, जल संरक्षण, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों, वानिकी व घास के मैदान और भूकंप आदि संबंधित उद्योगों के लिए सेवा भी देता है। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी उप स्थायी प्रतिनिधि ताइपिंग ने 12 अक्टूबर को कहा कि एक तरफा जबरदस्ती के उपाय मानव समाज का कैंसर है, जो अवैध है और अनुचित भी। चीन ने अमेरिका और आंशिक पश्चिमी देशों से शीघ्र ही एक तरफा जबरदस्ती के उपायों को रद्द करने का आग्रह किया। उस दिन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की रक्षा में मित्र समूह का एक तरफा जबरदस्ती के उपायों से मानवाधिकार पर नकारात्मक प्रभाव संबंधी बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाग लेते समय चीनी प्रतिनिधि ताइपिंग ने कहा कि एक तरफा जबरदस्ती के उपायों का विरोध लंबे समय से हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार आवाज उठा रहा है। चीन ने अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में न्याय की मांग का सामना करते हुए एक तरफा जबरदस्ती के उपायों को तुरंत रद्द करने और व्यावहारिक कार्यों के साथ वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करने का आग्रह किया और संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों, UN प्रणाली तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिबंध लगाए गए देशों को पर्याप्त समर्थन देने और उनके सामने मौजूद यथार्थवादी कठिनाइयों को दूर करने की अपील की। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और स्विट्जरलैंड के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में स्थित चीनी स्थायी प्रतिनिधि छन शू ने 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक की आम बहस में भाषण दिया और शरणार्थी मुद्दे पर चीन के रुख और दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण एवं मानवतावादी कार्यों के लिए चीन द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शरणार्थी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग करने पर जोर देना चाहिए। साथ ही उन्हें शरणार्थी समस्याओं को सुलझाने और मानवीय सहायता देने में समन्वयकारी भूमिका निभाने में संयुक्त राष्ट्र और UNHCR आदि बहुपक्षीय एजेंसियों का समर्थन करना चाहिए। सभी पक्षों को शरणार्थियों पर वैश्विक समझौतों को लागू करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी और वैश्विक शरणार्थी सुरक्षा प्रणाली में संयुक्त रूप से सुधार करना चाहिए। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक 12 अक्टूबर को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों, सर्दियों में ऊर्जा भंडार और बिजली बाजार में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हुई और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा प्राकृतिक गैस की संयुक्त खरीद पर आम सहमति हासिल हुई। यूरोपीय संघ के गुणन अध्यक्ष देश चेक गणराज्य के उद्योग और व्यापार मंत्री जोसेफ सिकला ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने 2023 से संयुक्त रूप से गैस खरीदने और यूरोपीय संघ के गैस मूल्य बेंचमार्क में समायोजन करने की आवश्यकता पर सहमति जताई ताकि बढ़ रही कीमतों और सट्टा व्यवहारों पर बेहतर ढंग से अंकुश लगाया जा सके।